शांति।
आज का प्रातः क्लास है 29/5/1968। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। और बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, ओ बेटे। और सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे तो बहुत हैं। तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। और बच्चे जानते हैं कि बाप पढ़ाने आए हैं। वो बाप पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अभी बाप तो बाप ही है और सारा दिन साथ रहते ही हैं। फिर समय पर आकर के पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा बनने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं और ये सभी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। इस पढ़ाई को बाप के बगैर कोई समझा ही नहीं सकता। ड्रामा के आदि मध्यंत का राज, 84 जन्मों के चक्र का राज सिवाय बाप के कोई बता ही न सके। इसलिए इनको बेहद का बाप कहा जाता है। इस बात का निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठा है। इस बात में संशय की बात नहीं उठ सकती। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय कोई भी पढ़ाई नहीं सकता। बुलाते भी हैं, बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये तो पतित दुनिया है और बाप ही पावन दुनिया में ले जाते हैं। बेहद का बाप है, वो हद के धर्म पिताए हैं, वो बेहद की नई दुनिया में नहीं ले जाते हैं। और वहां नई दुनिया में थोड़े ही कहेंगे, बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले जाओ। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है। जब ये बात बुद्धि में आती है तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए कि बरोबर बाप बगैर इतनी नॉलेज कौन दे सकता है। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। और निश्चय भी आत्मा की बुद्धि को होता है। आत्मा को ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। और फिर मुख से कुछ भी नहीं कहना है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सात जन्मों के संस्कार हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो अब हम इस पुरानी दुनिया में आवेंगे ही नहीं। वो मनुष्य तो समझते हैं कि इसी दुनिया में आना है, तुम तो ऐसे नहीं समझते हो। तुम ये हमारा कथा सुन रहे हो और हमारा कथा का भी अर्थ होना चाहिए। अमरपुरी जहाँ कोई मरता नहीं है, सब स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, तो सतयुग त्रेता अमरपुरी है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, ये पढ़ाई सिवाय बाप के कोई नहीं पढ़ा सकता। और बाबा हमको पढ़ाते हैं और जो भी टीचर्स हैं वो तो सभी ऑर्डिनरी मनुष्य हैं पढ़ाने वाले। यहाँ तुम जिसको पतित पावन कहते हो बाबा करके दुख हरो सुख दो, तो वो बाप तुमको सन्मुख अभी पढ़ाए रहे हैं। सन्मुख होने बिगर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ावेंगे? बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें कह के बहुवचन क्यों कर दिया? क्योंकि बेसिक पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और एडवांस पढ़ाई भी पढ़ाते हैं। बेसिक पढ़ाई ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं और एडवांस ज्ञान डायरेक्ट आकर के देते हैं। और है भी बरोबर भगवान वाची, और भगवान वाच है तो जरूर भगवान को शरीर चाहिए। ब्रह्मा को कोई भगवान नहीं कहता है, भगवान को मुख भी चाहिए। और न सिर्फ मुख चाहिए बल्कि भगवान को सारा शरीर चाहिए। सारा शरीर में क्या क्या आ जाता है? खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। और इस साधारण तन में आता हूँ, असाधारण गोरे चिट्ठे मनुष्य में नहीं आता हूँ, कोई करोड़पति में नहीं आता हूँ, बहुत गरीब भी नहीं और बहुत साहूकार भी नहीं। कैसे साधारण तन में आता हूं। तो ब्रह्मा बाबा को साधारण कहेंगे या असाधारण कहेंगे? ब्रह्मा बाबा को वो तो गरीब नहीं थे, तो ये साधारण तन है। ये तो बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि जो साधारण तन वाला है वो हमारा बाबा है। वो कह के दूर क्यों कर दिया? भविष्य में पार्ट बजने वाला है इसलिए वो कह दिया। हम आत्मा हैं और हम आत्माओं का वो बाबा है। सारी दुनिया जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सभी का बाबा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। ये नहीं कहा कि इनको बेहद का बाबा कहा जाता है। किनको? ब्रह्मा को बेहद का बाबा नहीं कहेंगे, उनको कहेंगे सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाबा। सारी मनुष्य सृष्टि उनको बाबा नहीं मानेगी। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं है। कोई सी भी पूछो ये शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, तो कहेंगे परंपरा से। आखिर ये परंपरा भी कब शुरू हुई? परंपरा की शुरुआत की कोई डेट तो होनी चाहिए। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। परंतु वो तिथि तारीख तो कोई भी नहीं जानते हैं। हमारा शिव बाबा आते हैं तो उस लव से जयंती नहीं मनाते हैं। नेहरू की जयंती उस लव से मनावेंगे। जो आंसू भी आ जावेंगे, परंतु शिव जयंती का किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे तो अनुभवी हो गए हो। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले आदि लगते हैं, वहां जो जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच सच क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, वहां जाकर के देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो औरों द्वारा जो सुनते हैं वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को तो अनुभव ही मिला है, जो जानते हैं कि राइट क्या है, रंग क्या है, भक्ति मार्ग में जो कुछ सुनते पढ़ते आए वो सभी है अनराइटियस, गायन भी है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये सारा है ही झूठ खंड, और वो है सच खंड सतयुग। ये कलयुग है, इनका नाम ही अलग है। इसको तुम जानते हो और तो कोई जानते भी नहीं है। उन्तीस पांच 68 की वाणी का दूसरा पेज, सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अभी कलयुग चल रहा है, और ये बात भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा ख्यालात रहता है, बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, उनके पास जो नॉलेज है वो इस तन द्वारा दे करके हमको आप समान बनाए रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश करके आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं, वो तो टीचर के हाथ व गुरु के हाथ दे देंगे। कि वो आप समान बनावे, वो सभी हैं हद की बातें। तुम अभी आए हो बेहद के बाप के पास, वो जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। अर्थात कैसा बनाना है? बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, तो बच्चे भी जब तक निराकारी न बने बाप के घर में नहीं जा सकते। जैसे टीचर आप समान टीचर बनावेंगे, बैरिस्टर करेंगे हम आप समान बैरिस्टर बनाते हैं। अंदर में जानते हैं कि सब तो आप समान नहीं बनेंगे, जरूर नंबरवार ही होंगे। ये बाप भी ऐसे कहते हैं कि नंबरवार बनेंगे। क्या नंबरवार बनेंगे? कौन से पुरुषार्थ में नंबरवार बनेंगे? निराकारी स्टेज धारण करने में भी नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूं ये अविनाशी पढ़ाई है। अब जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जावेगा। आगे चल करके खुद कहेंगे हम 4 वर्ष आगे 8 वर्ष आगे कोई से ये ज्ञान सुना था, अभी फिर इस ज्ञान में आया हूं। फिर कोई तो चटक पड़ते हैं, ये समा तो है। फिर उस समा पर कोई परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं। और कोई तो फेरी पहन करके चले जाते हैं। शुरू शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशक हो पड़े, कहेंगे ड्रामा प्लान अनुसार आशिक हुए। उस समय तो भट्टी बननी थी, कल्प कल्प ऐसे ही होता आया है। तो जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी हुआ था, आगे भी फिर वही रिपीट होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो, हम आत्मा हैं और बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सदैव इस निश्चय में पक्के रहो, इस बात को भूल न जाओ। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को न समझे। बलफार कति दे देगा तो भी समझेंगे हम बाप को फार कति दे दी। और ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। ये बाप तो सभी की सदगति करने वाला है। हम ये भी समझते हैं कि सतयुग में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी तो सभी शांति धाम में रहते हैं। और ये नॉलेज भी वही बाप सुनाते हैं। और तो कोई ये नॉलेज सुनाई नहीं सकता। कौन सी नॉलेज है? कि सतयुग आदि में कितने मनुष्य होते हैं नई दुनिया में, ये नॉलेज बाप ही सुनाई सकते हैं। और तो किसी की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता। तो तुम आत्माओं का वो बाप है जो ये नई नई बातें बताते रहते हैं। ये भी बाप की पहचान है। सृष्टि के आदि मध्यंत की भी उनको नॉलेज है। और वो चैतन्य बीज रूप है, तो वो चैतन्य बीज रूप क्या नॉलेज देंगे? जरूर सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज देंगे। सृष्टि का बीज है ना, और रचयिता जरूर रचना के आदि मध्यंत का नॉलेज देंगे। तुम ये आदि मध्यंत की नॉलेज थोड़े ही जानते थे? तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था और कहां चला गया? कोई को भी एक्यूरेट नॉलेज नहीं है। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो हम सभी आत्माओं का बाप है। वो हमको पढ़ाए रहे हैं, और ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। इस साकार शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है, और वो निराकार होते भी यहाँ ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं उनका कोई आकार नहीं है, इतने पत्थर बुद्धि हो गए हैं। महिमा भी गाते हैं ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कि निराकार कैसे सुख का सागर होगा? ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, और बाबा तो बहुत नजदीक ले आते हैं। वो तो कह देते हैं ये सृष्टि लाखों वर्ष पुरानी है, तो कितना दूर चले जाते हैं। बाप कहते हैं ये तो 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको पढ़ाने आते, ये भी समझते हो? पुरानी दुनिया सो नई दुनिया, नई दुनिया सो पुरानी होती है। जो पवित्र थे वो ही 84 जन्म लेकर के पतित बनते हैं, फिर वो ही पावन बनेंगे। ये सृष्टि का चक्र बाप ही समझाते हैं। ये नॉलेज और कोई से मिल नहीं सकती है, और ये नॉलेज है नई दुनिया के लिए। ये नॉलेज और कोई मनुष्य तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि सभी मनुष्य तमो प्रधान है। नई दुनिया कैसे स्थापन करेंगे? नई दुनिया तो सतो प्रधान होती है, तमो प्रधान आत्मा तो किसको सतो प्रधान बना ही नहीं सकती। उस पुरानी दुनिया के मनुष्य तो तमो प्रधान ही बनते जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानते। अभी तुम समझते हो हम फिर से जान रहे हैं, और बाबा इनमें प्रवेश कर हमको बताए रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिस दुश्मन ने ही तुमको गिराया है, वो माया दुश्मन तुम्हारा अभी पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म कराती जाएगी। फिर कुछ न कुछ चमाट लग जाएगी। अभी देखो आसुरी मत पर अपन को ऐसी चमाट मारी है, क्या क्या कर दिया है। शिवशंकर इकट्ठा कह देते हैं, अब अब उनका ऑक्यूपेशन क्या है? शिव मन कल्याणकारी और शंकर है संहारकारी। कितना फर्क है। और शिव तो है ऊंच पे ऊंच भगवान, शंकर तो ऊंच पे ऊंच देवता है, महादेव कहा जाता है। कहते भी हैं देव देव महादेव। सूक्ष्म वतन की तीन पुरियों में भी उनको ऊंचा रखा हुआ है। फिर शिव शंकर को मिलाकर एक कैसे कर देते हैं? इकट्ठा कैसे कह देते हैं? क्या जवाब देंगे? है शिव शंकर को इकट्ठा कैसे कह देते हैं? और कोई देवता को शिव के साथ नहीं कहते हैं, शंकर के लिए कहते हैं विनाश करता है। 29-5-68 की वाणी का तीसरा पेज। तो जो विनाश करता है वो तो अलग हो गया, और जो नई दुनिया बनाता है वो अलग हो गया। फिर दोनों को इकट्ठा क्यों कर दिया? इकट्ठा इसलिए कर दिया कि जब तक पुरानी दुनिया का विनाश नहीं होगा तब तक नई दुनिया बन नहीं सकती है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। बाकी पार्ट दोनों का अलग अलग है। दोनों का पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट है। यहां भी बहुतों के ऐसे नाम रख देते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों ही नाम सिर पर रख दिए हैं। किस आधार पर? नाम का कारण क्या है? काम। जरूर कोई सिर है, एक ही सिर है, जिस सिर में दोनों आत्माएं अपना अपना कार्य करती हैं। और दोनों आत्माओं का कार्य एक दूसरे से सामंजस्य रखता है। तो बच्चे ये समझते हैं, इस समय तक बाप ने जो समझाया है वो फिर भी रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोजे हैं, बाप बैठ थोड़े ही जावेगा। बच्चे नंबर बार पढ़ करके जावेंगे, और पूरे कर्मातीत बन जावेंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला बन जाएगी? सभी आत्माओं की माला बन जाएगी। जब सभी आत्माओं की माला बन जाएगी तब फिर सभी वापस जावेंगे। कितने वापस जावेंगे? कितनों की माला बन जावेगी? चाहे छोटी माला हो चाहे बड़ी माला हो, सभी मालाएं तैयार हो जावेंगी, फिर सब नंबर वार जावेंगी। माला नंबर वन तो तुम्हारी है, कौन सी है नंबर वन माला? रुद्रमाला, शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। कितनी लंबी है? है? अरे शिव बाबा की माला कितनी लंबी है? कितने हैं जो शिव बाबा को याद करेंगे? है? अरे याद किए बगैर थोड़े ही परमधाम वापस ले जावेंगे। तो कितनी संख्या है? 4.5 लाख। बाकी सब इसी दुनिया में रहेंगे है? 500-700 करोड़ सारी शिव बाबा की लंबी माला है। उसको नंबर वन माला नहीं कहेंगे। बाकी तुम्हारी है नंबर वन माला। फिर वहां से नंबर वार आवेंगे पार्ट बजाने। सभी बाबा बाबा कहते हो ना, और सभी एक माला के दाने हो, बाकी सभी को विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे। सभी कौन सी माला के दाने हैं? शिव बाबा की माला के दाने हैं। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? बाकी सूर्यवंशी तो बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए हैं वो फिर बनेंगे, और वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी का मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बगैर ये मर्तबा मिल नहीं सकता। चित्र भी हैं, परंतु कोई भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथाएं भी सत्यनारायण की सुनते हैं, परंतु समझते नहीं है कि हम नरसिंह नारायण बनेंगे। सिर्फ ऐसे ही जाकर के सुनते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं अगर नहीं सुनेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। भक्ति मार्ग है ना, बहुत ही डर की रोचक बातें मनुष्य को सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में भी ऐसी ऐसी बातें हैं। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया ही विषय वैतरणी नदी रौरव नरक है, और वो रौरव नरक भी खास भारत को कहेंगे। दूसरे देशों को रौरव नरक नहीं कहेंगे, और बृहस्पति की दशा भी बैठती है भारत पर। और देशों के ऊपर बृहस्पति की दशा नहीं बैठती है, बृहस्पति कहो वृक्षपति कहो, वो वृक्षपति जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है बाप है। बाप कहो पति कहो, भारतवासियों को ही बैठ पढ़ाते हैं। वो बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। दशाएं बैठती है ना, राहु की दशा, जब राहु की दशा बैठती है तो फिर कहते हैं देह दान तो छूटे ग्रहण। भक्ति मार्ग में राहु की दशा किसके ऊपर बैठती है, है? किसके ऊपर? चंद्रमा और सूर्य के ऊपर बैठती है राहु की दशा, ऐसा भक्ति मार्ग में समझते हैं। राहु ने सूर्य को ग्रस लिया, चंद्र को ग्रस लिया, फिर कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण।
सूर्य को कैसे
ये भक्ति मार्ग में कहते हैं, दान दो तो ग्रहण छूटेगा। और बाप भी कहते हैं इस कलयुग के अंत में राहु की दशा सभी पर है, अभी मैं वृक्षपति आया हुआ हूँ, भारत पर वृक्षपति की दशा बैठाने। सतयुग में वृक्षपति की दशा भारत पर थी, कौन है वृक्षपति या बृहस्पति? शिव को कहें शिव को कहें वृक्षपति, सतयुग में वृक्षपति की दशा भारत पर होती है। सतयुग में शिव होता है? शिव तो नहीं होता, फिर कौन होता है? शिव जिस मनुष्य सृष्टि के बीज में प्रवेश करता है वो होता है। अभी तो राहु की दशा है, ये बेहद की बात है। ये बात कोई शास्त्रों में नहीं है। तुम मैगजीन आदि बैठ लिखते हो, वो भी जो कुछ न कुछ भट्टी में पड़े हुए होंगे उनको मैगजीन मिलने से कुछ समझ में आवेगा, वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़ करके छोड़ देते हैं तो फिर थोड़ा भी ज्ञान ग्रंथों में डालने से सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को ग्रंथ भी कहा जाता है, बुझे हुए दीवे में बाप भी ज्ञान ग्रंथ डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान तो बहुत आवेंगे, दीवे को बुझाए देंगे, क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन करके चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सभी परवाने हैं, कोई फर्स्ट क्लास आए और स्वाहा हुए, कोई सेकंड क्लास आते हैं जाते हैं फिर आते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, और तीसरे हैं थर्ड क्लास, एक बार चले गए फिर कभी आए ही नहीं। पहले पहले एकदम घर बार छोड़ करके आ गए, परवाने बन गए, जैसे उनको एकदम लॉटरी मिल गई। कोई तो ऐसे आए जो पेट में भी बच्चा लेकर के आ गए, जो कुछ पास्ट हुआ फिर तुम ऐसे ही करेंगे, बल चले गए। ऐसे नहीं समझना कि जो चले गए वो स्वर्ग में नहीं आवेंगे, हाँ परवाने बने आशुक हुए फिर माया ने हरा दिया तो पद कम हो जाएगा। नंबर बार तो होते ही हैं, हजार सत्संगों में कोई की बुद्धि में नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में हम बाप से नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं, हम वेद के बाप के सन्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो वो आत्मा देखने में नहीं आती है। आत्मा तो अव्यक्त चीज है, उनको दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी है, परंतु देह अभिमान छोड़ अपन को आत्मा समझना है तो ये है ऊंचते ऊंच पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट में अक्सर करके फेल हो जाते हैं। ये सब्जेक्ट भी बहुत सहज है, परंतु फिर कईयों को डिफिकल्ट अनुभव होता है। सभी उनको शिव बाबा कहते हैं। अभी तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठा है, ये कोई उनका अपना शरीर नहीं है, उनको अपना शरीर होता ही नहीं। तुम भी आत्माएं हो निराकार, परंतु शरीर के साथ हो, और बाप तो अपना शरीर कब लेते ही नहीं है। और मनुष्य फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, अर्थात कुछ भी नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट समझ लिया है। बाप समझाते हैं कि कृष्ण को याद करने से कुछ भी नहीं मिलेगा, बल स्वर का नंबर वन प्रिंस है, उनको भी न जानने के कारण उनको भी कहां कहां रुलाई दिया है। उन्तीस पांच अड़सठ की वाणी का चौथा पेज, कृष्ण के लिए भी कब कहते हैं यशोदा का बच्चा, कब कहते हैं रुक्मिणी का बच्चा।
अरे
कब कहते हैं देवकी का था, आखिरी ने भी वो किसका बच्चा है। कितने माँ बाप दे दिए हैं, ये भी तो रंग है। तो बाप बैठ सभी बातें समझाते हैं, बाप कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग का भूसा भरा हुआ है, अभी मैं तुमको ज्ञान देता हूं। भक्ति करने से कोई नई दुनिया में नहीं जाते हैं, ज्ञान से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ज्ञान सागर कब आवेंगे, जब आवेंगे तब तो पावन बन सकेंगे। भक्ति मार्ग है ही पतित, तब ही बाप को बुलाते हैं हे पतित पावन। और गांधी भी यही गाते थे, समझते थे कि गांधी राम राज्य स्थापन करते हैं, अभी भी समझते हैं कि वो गांधी जी राम राज्य स्थापन करके गए। अब हमारा राज्य हो गया। वो फिरंगी लोग रावण थे, वो चले गए। कई तो ऐसा समझने में ही खुश हो जाते हैं, परंतु ये कोई रामराज्य थोड़े ही है। रामराज्य तो स्वर्ग में होता है। कहाँ है स्वर्ग? ये लक्ष्मी नारायण चैतन्य कहाँ है? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य हो तब ही कहें रामराज्य। वो तो नई दुनिया होनी चाहिए, सभी कुछ सोने का होना चाहिए। अभी तो ये और ही रावण राज्य तमो प्रधान बन गया है। फिर भी उन फिरंगियों के राज्य में इतने कंगाल नहीं थे, अनाज आदि बहुत सस्ता था। अभी तो कितने कंगाल हैं। सभी अकल आदि तो वहां से ही सीखते हैं, बाप समझाते हैं। जो सतो प्रधान थे वो ही अभी तमो प्रधान बने। तुमने जितना सुख देखा है उतना और कोई ने नहीं देखा होगा। फिर तुम ही सबसे जास्ती दुखी हुए हो। उन्हों की बुद्धि तो तीखी है, कितना साइंस आदि निकालते हैं। अभी ये भी कहते हैं हम भी बॉम्ब बना सकते हैं, उनसे भी अपन को तीखा समझते हैं। है ये सब देह अभिमान, बाप देही अभिमानी बनाते हैं। वो भी अपनी बुद्धि से मूसल आदि निकालते हैं, अपने कुल का विनाश के लिए निकालते हैं। बांस से उस तरफ सारा खलास होंगे। ये कोई उनका कुल थोड़े ही है, वो है यादव कुल। यहाँ तो यवनों और हिंदुओं की सिविल वार है, खून की नदियां बहेंगी, उसमें बहुत हाय हायकार होगा। बांस में कोई हाय हायकार की बात नहीं है, बैठे बैठे अचानक खलास हो जावेंगे। मुख से हाय हाय निकलने का भी टाइम नहीं रहेगा, गला ही घुट जाएगा। यहाँ तो हाय हायकार के बाद फिर जय जयकार होगा, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि अनेक बार ये चक्कर फिरा है। भक्ति मार्ग में है ही घोर अंधेरा, अभी तक भी समझते रहते हैं कि 40,000 वर्ष पड़े हैं कलयुग में। बाप कहते हैं कि ये ड्रामा ही 5,000 वर्ष का है, अभी तुम समझावेंगे तब ही जगेंगे। वो भी जगेंगे भाई जो कल पहले जगे होंगे। पढ़ाई में कभी सभी एक रस पास नहीं हो सकते, ये चक्कर चलता ही रहता है। दिन रात संबत ये चलता ही रहता है। फिर भी पहला संबत होगा ना, अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो और वो कलयुग में है। ये वंडरफुल बात है। ये सभी है अडॉप्शन रचना। पवित्र जरूर बनना है नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ भी नंबर वार कर रहे हैं। कलप पहले भी वही राजा ही बनेगी। ये बातें बेहद के बाप बिगड़ कोई नहीं सुना सकता। फिर क्या करेंगे? क्या उस बाप को थैंक्स देंगे? नहीं, तुम तो थैंक्स भी नहीं देंगे। बाप कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं करता हूं। और थैंक्स आदि तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को थैंक्स दी जाती है, स्टूडेंट फिर बाप को थैंक्स देंगे। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं उनको थैंक्स देते हैं, बच्चे जीते रहो, ऐसे ऐसे सर्विस करते रहो। कलप पहले भी ऐसे थैंक्स दी थी, फिर भी कहते हैं खबरदार रहना। अच्छा, ओम शांति।